शायर कहता है, इस काफिये में इंसान का सेर खूब है। फरमाते हैं, इतना तो फिरा वादिये वहशत में कि मेरे, इतना तो फिरा वादिये वहशत में कि मेरे है पाए नज़र में भी बड़ा अश्क का छाला। हम जोली कहता है, लेकिन नज़ीर का शेर भी अपनी जगह लुत्फ से खाली नहीं है। सहरा में मेरे हाल पे कोई भी ना रोया, गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। शायर सौदा ने भी कही है इस ज़मीं में गज़ल। हम जौली, सैयद इंसा अल्लाह खान की कोई चीज़ तुम्हें याद है मियाँ? किताब वाला, भाई इंसा और मुसहफ़ी की मार्का अराइयों का जवाब नहीं है। खुसुन वह गज़ल शबे देजूर की गर्दन, उसमें जो नोक झोंक हुई है दोनों की, अजब लुत्फ रहता होगा बखुदा नवाब सआदत अली खां के दरबार में भी। तज़कीर नवीस, आप भी कब की बात कर रहे हैं हजरत? शबे देजूर की गर्दन वाला ज़माना गया, अब तो सैयद इंशा अल्लाह जैसे हसोड़ के लब पर यही गिरिया जारी है। कमर बांधे हुए चलने की या सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं। हम जोली, और अब तो सुना है कि आतिश वो नासिक की वो आवाज़ें गूंजी है लखनऊ में कि इंशा व मुसहफ़ी भी फीके पड़ गए। किस कदर जानदार शायर है आतिश भी, ज़ोरे बयां देखिए। फरमाते हैं, यह बज़्म वह है कि लाखैर का मुकाम नहीं, हमारे गंजफे में बाजिए गुलाम नहीं। शायर, और नासिख का जवाब भी खूब है, जो खास बंदे हैं वह बंदे आवाम नहीं, हज़ार बार जो यूसुफ बिके गुलाम नहीं। हम जोली, नहीं भाई, यह ख्वाम ख्वा की लड़ाई है। शेर खूबसूरत है मगर तसन्नो आमीज, वह सच्चाई वह आग इसमें नहीं जो आतिश के हाँ में है। शायर, आप हुस्ने जवाब देखिए, सच्चाई और आग क्या तलाश कर रहे हैं? किताब वाला, आप लोग, ए तुम लोग बैठ जाओ, यहाँ दो चेयर रखा हुआ है तो। हाँ, पॉज दे दिया। किताब वाला, आप लोग भी वही करने लगे बखुदा जो दिल्ली और लखनऊ के दरबारों में हमारे असातज़ा कर रहे हैं। अब यह बहस ख़त्म कीजिए और शेर सुनिए। हाँ मियाँ, लड़का कहता है, क्या सुनिएगा? तस्कीर नवीस झुंझलाकर, जो चाहे सुना। पतंग वाला, नज़ीर की यह नज़्म सुना तैराकी का मेला, याद है? लड़का, जी हाँ सुनिए। अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं। जाते हैं उनमें कितने पानी में साफ सोते, कितने कितनों के हाथ पिंजड़े, कितनों के सर पे तोते। तस्कीर नवीस झुंझला कर उठ खड़ा होता है और बगैर कुछ कहे चला जाता है। सबको बड़ी हैरत होती है, महफिल पर एक सन्नाटा छा जाता है। बहुत से रास्ता चलने वाले बड़े शौक से नज़्म सुनने के लिए रुक गए हैं। इस जमघट को देखकर मौलवी साहब बरस पड़ते हैं। लड़का, कितने पतंग उड़ाते, कितने मोती पिरोते, हुक्म का दम लगाते, हंस हंस के या शाद होते, सौ सौ तरह का कर कर बिस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं। किताब वाला, बस करो मियाँ, आवाज़ उठाकर, आप लोग यहाँ क्यों जमा हो गए हैं साहब? कोई मदारी का खेल हो रहा है या प्रसाद बंट रहा है। भीड़ पीछे हट जाती है और एक सन्नाटा छा जाता है। ककड़ी वाला बाई तरफ से अंदर आता है। ककड़ी वाला मुर्दा आवाज में, पैसे की छह छह, पैसे की छह छह। किताब वाला उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा है। ककड़ी वाला जो अब तक अनजान था, मौलवी साहब की निगाहों को देखकर अचानक चुप हो जाता है और भाग कर दाएं कोने में दुबक जाता है। पतंग वाला जो भीड़ में सबसे आगे था, किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ता है। पतंग वाला, इधर आना मियाँ, लड़के का हाथ पकड़कर अपनी दुकान की तरफ ले जाता है। किताब वाला, लीजिए, हमने सोचा था खुश गुल लड़का है, मौलाना कलाम सुनकर खुश होंगे। मैं क्या जानता था कि वह यह बाजारी कलाम सुनाने लगेगा। आखिर मौलाना नाराज होकर चल दिए। हमजोली, लेकिन नज्म तो खूब थी साहब। शायर, जी हाँ, सौ सौ तरह का कर कर बिस्तार पैरते हैं। कर कर, इसे आप शायरी कहते हैं? यूं मालूम होता है कि आदमी शेर नहीं पढ़ रहा है, ककड़ियां खा रहा है। हमजोली, लेकिन साहब, कर कर मुस्तमैल है, असा ने बांधा है। चलिए शायर, चलिए अब उठिए। किताब वाला, माफ कीजिएगा। शायर, इसमें आपका क्या कसूर है मौलाना? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। किताब वाला, वालेकुम अस्सलाम। शायर और हमजोली चले जाते हैं। लोग अब पतंग वाले की दुकान पर जमा हो जाते हैं। अब कमबख्त वहां जम गए। मौलवी साहब हिसाब किताब में लग जाते हैं। पतंग वाला गवैये को अपनी दुकान में बिठाता है। पतंग वाला, सुनो मियाँ, नजीर कहते हैं, किस्मत में गर हमारी यह मैं है तो साकिया बे इख्तियार हाथ से शीशा करेगा जस। पहले ही क्यों न बताया यार कि तुम्हें मियाँ नजीर का कलाम याद है। लड़का, मैं पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनाने की गरज से तो आया नहीं था। पतंग वाला, अरे यार, मगर यह तो जानते हो कितनी पुरानी याद अल्लाह है हमारी मियाँ नजीर से। उनका कलाम सुनाना था तो हमारी दुकान पर बैठकर सुनाते, वहां शेर पढ़कर उनको भी बेइज्जत किया और हमें भी। वाह, इसी पर तो कहा है हजरत नजीर ने कि दिल सा दुरे यतीम, बिका कौड़ियों के मोल, क्या ली क्या कीजिए खैर, यह भी खरीदार के नसीब। अच्छा सुनाओ कुछ अपनी आवाज में। लड़का, आप फरमाइए क्या सुनाऊं। पतंग वाला, वही नज्म सुनाओ तैराकी वाला, और क्या। लड़का, अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं। जाते हैं उनमें कितने पानी में साफ सोते, कितनों के हाथ पिंजड़े, कितने के सर पे तोते, कितने पतंग उड़ाते, कितने सुई पिरोते, हुक्की का दम लगाते, हंस हंस के शाद होते, सौ सौ तरह का कर कर बिस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं। कितने खड़े ही पर पैरे अपना दिखा के सीना, सीना चमक रहा है हीरे का जीव नगीना, आधे बदन पे पानी आधे पे है पसीना, सरों का बह चला है गोया की इक करीना, दामन कमर पे बांध दस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं। हर आन बोलते हैं सैयद कपीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय, मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, फिर गोले के सब अपने खुर्दों कबीर की जय। हर दम या हर खुशी की गुफ्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं। नज्म के दौरान बहुत से लोग जमा हो जाते हैं। जिनमें खुमची वाला भी शामिल है। पतंग वाला, वाह वाह मियाँ, यही कलाम तो दिल को लगता है, पर जमाने ने कद्र न की यार इस शायर की। कहता है न गुल अपना न खार अपना, न जालिम बागबां अपना, बनाया आह किस गुलशन में हमने आशियां अपना। सब वाह वाह क्या कहने हैं। पतंग वाला, अच्छा कोई चीज अपनी पसंद की सुनाओ। लड़का गाते हुए, पहले नाव गणेश का लीजे शीश नवाए, जासी करज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए, बोल बचन आनंद के प्रेम प्रीत और चाह, सुन लो यारो ध्यान धर महादेव का ब्याह, जोगी जंग से सुना वह भी किया बयां, और कथा में जो सुना उसका भी प्रमाण, सुनने वाले भी रहे हंसी खुशी दिन रैन, और पढ़े जो याद कर उनको भी सुख चैन, और जिसने उस ब्याह की महिमा कही बनाए, उसके भी हर हाल में शिवजी रहे सहाय, खुशी रहे दिन रात वह कभी न हो दिल गिर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नजीर। भीड़ में एक आदमी हरी कफनी पहने खड़ा है और रो रहा है। पतंग वाला उसे पहचान कर उसकी तरफ लपकता है। पतंग वाला, अरे मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन मुंह फेर लेता है। यह क्या हुलिया बना रखा है मियाँ, क्या हाल है। फकीर चुप खड़ा रहता है। एक आदमी, इनको हमने तो कभी बात करते सुना नहीं। बेनी प्रसाद आगे बढ़कर, तुम्हें नहीं मालूम कोई एक बरस से इनका यही हाल है। पतंग वाला, अम्मा बेनी प्रसाद क्या कहा, क्या एक बरस से आगरे में है। यह तो घोड़ों की तिजारत करते थे भाई, कोई 4 बरस पहले घोड़े लेकर हैदराबाद की तरफ गए थे, उसके बाद से इन्हें आज देखा। अम्मा मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन चला जाता है। बेनी प्रसाद, ताज्जुब है तुमने इन्हें नहीं देखा, या शायद देखा होगा तो पहचान न सके होगे, यही कुछ दिनों से चक्कर काट रहे हैं, एक तवायफ पर आशिक हैं। पतंग वाला, यह चुप जो इन्हें लग गई है, और यह कफनी दाढ़ी फकीरी, क्या यह सब उसी इश्क का नतीजा है, मुझे तो देखा नहीं गया भाई। मंजूर हुसैन जैसा हसमुख यार बाश आदमी और यूं बदल जाए, तुम्हें मालूम है ना। यह मियाँ नज़ीर के साथ उठने बैठने वालों में से है, मेरा इनका याराना कोई 20-25 बरस का होगा। बेनी प्रसाद, हाँ हाँ खूब जानता हूँ। पतंग वाला, अम्मा कुछ बताओ बेनी, यह आखिर हुआ क्या, मेरी तो अकल गुम है। बेनी प्रसाद, भाई इन पर क्या बीती यह तो किसी को मालूम नहीं, बस इतना सुना है कि दक्कन के से वापसी के वक्त झांसी के करीब ठगों ने इनके सारे घोड़े और माल असबाब लूट लिया। साल भर पहले जब आगरा वापस आए तो उस वक्त इनके हालत दिगरंगू थी। खैर उस वक्त यह फकीर नहीं थी, कभी कभी किसी से कुछ बातों में भी कर लेते थे, मगर कम कम, बस ज़्यादातर जमुना के किनारे एक मकबरे पर बैठे पानी की लहरें गिना करते थे, फिर याकायाक गायब हो गए, कभी मथुरा कभी मेरठ में दिखे गए, अभी अभी वापस आए हैं और यह हालत लेकर आए हैं। पतंग वाला, फालिस का असर है या जुनून का दौरा, आखिर कुछ तो सबब होगा इस तगयूर का। बेनी प्रसाद, तरह तरह की बातें सुनने में आती है, कोई कहता है अल्लाह वाले हो गए हैं, कोई कहता है लुट जाने की वजह से यह हाल हुआ है, लोग यह भी कहते हैं कि इश्क सादिक का असर है, इश्क मजाजी की राह की खुदा तक पहुंचाने कोई अनसुनी बात भी नहीं है। पतंग वाला, फुर्सत उम्र कतरे शबनम, वसले महबूब गोहरे नायाब। यह आदमी हमेशा से जकी उल हिस वाके हुआ है। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। जानते हो मियाँ नज़ीर से इनकी पहली मुलाकात क्यों कर हुई? मियाँ नज़ीर ताजगंज से माइथान टट्टू पर जा रहे थे लाला बिलास राय खत्री के लड़कों को पढ़ाने के लिए। इधर से मंजूर हुसैन पाप यादा चले आ रहे थे। रास्ते में टट्टू अड़ गया। मियाँ नज़ीर ने एक चाबुक तो उसके रसीद किया तो वह मंजूर हुसैन के लगता हुआ टट्टू के लगा। मियाँ नज़ीर टट्टू से उतर पड़े और ज़बरदस्ती उनके हाथ में चाबुक देकर कहा, मियाँ मेरे भी एक जड़ दो। उन्होंने बहुत मिन्नत की, वह ना माने। आखिर मजबूरन मंजूर हुसैन ने चाबुक लेकर ज़रा सा उनके छुआ दिया और दौड़े हुए मेरे पास आए, मुझसे सारा हाल बताया और घर जाकर पढ़ रहे। 2 दिन तक खाना पीना सब मौकूफ। जब मियाँ नज़ीर ने मेरी ज़बानी यह हाल सुना तो बेचैन होकर उनके पास गए, उन्हें अपने घर ले गए, खातिर तवज्जो की, उनके साथ होली खेली, मिठाई खिलाई, अपनी नज़में सुनाई। बस उस दिन से यह मियाँ नज़ीर के और भी गिरविदा हो गए। फिर ऐसे कि रोज़ का आना जाना रहता था। क्या ज़माने ने एक इनकलाब है, बेनी प्रसाद ने कहा। फिर पतंग वाले ने कहा, छोड़ सब कामों को गाफिल, भंग पी और दंड पेल, कुछ और सुनाओ मियाँ, तबीयत मुजमहिल हो गई। लड़का, क्या सुनाओ? पतंग वाला, नज़ीर का कलाम सुनाओ, और क्या सुनाओगे, उसका हर शेर बेनज़ीर है। लड़का, मियाँ नज़ीर ने खुद अपने कलम से अपनी तस्वीर खींच दी है, अगर इजाज़त हो तो। पतंग वाला, इजाज़त? मियाँ तुम शेर व शायरी का कारोबार करने वाले की दुकान पर नहीं बैठे हो, शेर व शायरी पर जान देने वाले के पास बैठे हो। सुनाओ और क्या, और खुले बंदों सुनाओ। लड़का कहता है, कहते हैं जिसको नज़ीर, सुनिए टुक उसका बयां। वह था मुअल्लिम, गरीब बुजदिल व तसींदा जां, सुस्त रवीश पस्ता कद, सावला हिंदी नजाद, तन भी कुछ ऐसा ही था कद के मुआकिफ आया। माथे पे एक खाल था, छोटा सा मस्से के तौर था, वह पड़ा आन कर आबरुओं के दरमियाँ, वज़ा सबुक उसकी थी, तिस पे न रखता था रीश, मूछे थी और कानों पर पट्टे भी थे पबा सा, पीरी में जैसी की थी उसकी दिल अफसुर्दगी, वैसी हो रही थी उन दिनों, जिन दिनों में था जवां, फ़ज़ल ने अल्लाह के उसको दिया उम्र भर, इज़्ज़त व हुरमत के साथ परचाओ आबो ना। सब, वाह 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 वाह, क्या इनकिसारी है। मियाँ नज़ीर की नवासी उछलती कूदती गुनगुनाती हुई आती है। नवासी, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। पतंग वाला, अरे बिटिया। नवासी, अभी आई, यह कर दूसरी तरफ निकल जाती है। सिपाही जो वहीं भीड़ में खड़े नज़में सुन रहे थे और बार बार मुड़कर ऊपर कोटे की तरफ निगाहें फेंक रहे थे, पान की दुकान पर आते हैं। पहला सिपाही कहता है, ज़रा 2 पान लगा देना भाई। दूसरे सिपाही से, दिन चढ़ आया है पर यह माइक का लाल ऐसा चिपका है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। दूसरा सिपाही, वहाँ है भी या गायब हो गया। पहला सिपाही, जाने का रास्ता एक ही है और मैंने नज़रों को कील की तरह चौखट पर ठोक दिया है। दूसरा सिपाही, अगर गया ही न हो तो क्या हम दिन भर यहीं टंगे रहेंगे। पहला सिपाही, यह कैसे हो सकता है? दरोगा साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा है। दूसरा सिपाही, कल रात देखा होगा, और अगर वह रात ही को निकल गया हो। मद्दारी रिछ लिए हुए आता है, उसके पीछे बच्चे हैं, रिक्श का नाच होता है। मदारी, जब हम भी चले साथ चला रिक्श का बच्चा, कल राह में जाते जो मिला रिक्श का बच्चा, ले आए वहीं हम भी उठा रिक्श का बच्चा, सो नेमते खा खा के पला रिक्श का बच्चा, जिस वक्त बड़ा रिक्श हुआ रिक्श का बच्चा, जब हम भी चले साथ चला रिक्श का बच्चा, कहता था कोई हमसे यहाँ आओ मछंदर, वह क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे वह बंदर, हम उनसे यह कहते थे यह पेशा है कलंदर, हाँ छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगले के अंदर। जिस दिन से खुदा ने यह दिया रिक्श का बच्चा, था हाथ में एक अपने सवा मन का जो सोटा, लोहे की कड़ी जिसपे खड़कती थी सरापा, कांधे पे चढ़ा झूलना और हाथ में पियाला, बाजार में ले आए दिखाने को तमाशा, आगे तो हम और पीछे चला रिक्श का बच्चा, था रिक्श के बच्चे पे वह गहना जो सरासर, हाथों में कड़े सोने से बसते थे झमक कर, कानों में दूर और घुंघरू पड़े पाँव के अंदर, वह डोर भी रेशम की बनाई थी जो पुरजोर, जिस डोर से यारो था बंधा रिक्श का बच्चा, जब कुश्ती की ठहरी तो वहीं सर को जो झाड़ा, ललकारते ही उसने हमें आन लताड़ा, गह हमने पछाड़ा उससे गह उसने पछाड़ा, एक ढेर पहर हो गया कुश्ती का अखाड़ा, गो हम भी न हारे न हटा रिक्श का बच्चा, यह दावों में पेचों में जो कुश्ती में हुई दे, यो पड़ते रुपए पैसे की आंधी में गया गोया बेर, सब नकद हुए आके सवा लख रुपए ढेर, जो कहता था हर एक से इस तरह मुँह फेर, यारो तो लड़ा देखो जरा रिक्श का बच्चा। मदारी चला जाता है, नजीर की नवासी एक खिलौना लिए नजर आती है, पतंग वाला उसकी तरफ बढ़ता है और उसे खींचकर अपनी दुकान पर लाता है। पतंग वाला गाते हुए, मोहन मेरे आए ललन मेरे आए, नवासी खिलौना दिखाते हुए कहती है, मैं यह लेने गई थी। पतंग वाला, नाना के पैसे जट लिए होंगे क्यों? नवासी, नहीं तो। पतंग वाला, फिर क्या मुफ्त हाथ आ गया खिलौना? नवासी, घर में पड़े थे। पतंग वाला, घर में क्या पड़े थे? नवासी, मैं बताऊं, हमारे नाना पैसे को हाथ नहीं लगाते, जैसे हमको अम्मा कहती है ना कि गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वैसे ही नाना ने पैसे को रुमाल बांधकर कोने में फेंक दिया। पतंग वाला, और तुमने उठा लिया? नवासी, सब थोड़े ही, और यह कहकर उछल कर भाग जाती है। पतंग वाला हंसता है। पतंग वाला बेनी प्रसाद से कहता है, गर मर्द है तू आशिक, कौड़ी न रख कफन को, हाल ही का वाकिया है, रुपयों की थैली लिए नवाब सआदत अली खां के पास से आदमी आया, रात भर रुपया घर में पड़ा रहा, और रुपये की वजह से मियां नज़ीर को नींद न आई, सुबह को जवाब में कहला भेजा कि ज़रा सा ताल्लुक से तो यह हाल है, अगर जिंदगी भर का साथ हो गया तो न जाने क्या होगा, बुलावे बहुत आए पर मेरा यार आगरे से न टला, वह हर बार यह कहकर टाल गया कि मैं माशे भरकर कलम चलाने वाला, मेरी क्या मजार, बस यहीं बैठे बैठे सारी दुनिया देख ली। कहते हैं आवाज़ उठाकर, सब किताबों के खुल गए माने, जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। इशारा किताब वाली की तरफ था। किताब वाला झुंझला कर रह जाता है। ककड़ी वाला, मियाँ कहाँ रहते हैं यह हजरत नज़ीर? पतंग वाला, क्यों क्या बात है? ककड़ी वाला, वह बात यह है कि ऐसे ही पतंग वाला आखिर ककड़ी वाला, मैं अपनी ककड़ी पर दो चार शेर लिखवाता उनसे। पतंग वाला कहकहा लगाकर, यह आपको खूब सूझी, इस काम के लिए मियाँ नज़ीर से बेहतर और कौन आदमी मिलेगा। अभी कुछ दिनों का वाक्या है, एक साहब पहुंच गए उनके यहाँ अपने टूटे हुए दिल का दुखड़ा लेकर। किसी महजबीन ने बेवफाई की थी उनके साथ, अपनी दास्तान सुनाई और कहा कि दिल को क्यों कर समझाऊं, किसी पहलू चैन नहीं लेता, हरदम आँखों के सामने उस महल का की तस्वीर जमी रहती है। मियाँ नज़ीर ने उनके हसबे हाल एक नज़्म लिख दी, बस उन साहब को चैन मिल गया। अब वह नज़्म गुनगुनाते फिरते हैं और खुश व खुर्रम हैं। ककड़ी वाला, रहते कहाँ हैं मियाँ? पतंग वाला, बेगम बांदा का महल देखा है? ककड़ी वाला, जी नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? पतंग वाला पूछता है। ककड़ी वाला, दिल्ली के पास के रहने वाला हूँ। पतंग वाला, अच्छा, मोहल्ला ताजगंज देखा है? ककड़ी वाला, जी हाँ देखा है। पतंग वाला, वहीं वहाँ पहुँच कर किसी से मलिकों वाली गली पूछ लो और बेगम बांदा के महल पहुँच जाओ। महल के बराबर ही एक छोटा सा मकान है, वह मियाँ नज़ीर का है। ककड़ी वाला खुशी खुशी बाएं रास्ते की तरफ भागता है। रास्ते के पास एक अजनबी से टक्कर हो जाती है। अजनबी कहता है, क्या अंधे हो गए हो? ककड़ी वाला, माफ़ करना मियाँ, ज़रा जल्दी में हूँ। यह कह वह चला जाता है। अजनबी बाजार में टहलता है। पतंग वाला, हमीद और उन लोगों को सुनाते हुए जो अब तक वहाँ जमा हैं। मियाँ नज़ीर की निगाह में आदमी आदमी में कोई फ़र्क नहीं, चाहे वह पतंग बनाने वाला हो, चाहे किताब बेचने वाला, उनके लिए तो बस आदमी है। आवाज़ उठाकर कहता है, किताब वाला गुस्से से लाल हो रहा है। अजनबी किताब वाले से, साहब कलामे नासिक होगा आपके यहाँ। किताब वाला, पतंग वाले का गुस्सा अजनबी पर उतारता है, मियाँ नासिक कल के छोकरे हैं, अभी अभी शेर कहना शुरू किया है और अभी से आप उनके कलाम की तलाश में निकल पड़े? ऐसा ही शौक है तो लखनऊ तशरीफ़ ले जाइए और खुद सुन लीजिए। अजनबी, अभी अभी यहाँ कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, नासिक साहब का एक शेर मेरे कान में पड़ा, मैंने सोचा। किताब वाला, कि मैंने आपकी किताबों के इश्तिहार के लिए लोगों को जमा कर रखा है, यह शौक और यह जहलात, सुभान अल्लाह। अजनबी डर कर पीछे हट जाता है, लेकिन घूमकर फिर हमला करता है और कहता है, यह इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए हैं साहब? किताब वाला गुस्से से बेकाबू होकर, आप ही की तरह के जाहिल हैं, एक जाहिल का कलाम सुनने के लिए जमा हो गए हैं। अजनबी सिट सिट पिटा कर चला जाता है। लोग कहकहा लगाते हैं, एक से एक चला आता है, सुबह से दुकान खोलकर बैठे हैं, जो भी है तरह तरह के सवालात लेकर पहुंच जाता है, खरीद फरोख की बात ही नहीं, लाहौल बिला कुवत। मुंशी गंगा प्रसाद किताब वाले के पास आते हैं। किताब वाला, आदाम अर्ज करता हूँ मुंशी जी, मिजाज बखैर। गंगा प्रसाद, इनायत साहब, यह आपने किस मस्खरे को मेरे पास भेज दिया था और किस गरज से? किताब वाला, अजी मैं उन्हें क्या भेजता, बातों बातों में आपका जिक्र आ गया, उन्हें अपनी किताब छपवाने के लिए सरमाए की तलाश थी, भला मेरे पास कहाँ से आए पैसे, बस उनके जी में आई होगी आपसे रुपया मांग ले। गंगा प्रसाद, देखिए मैं तो अब उर्दू फारसी के किताब से भर पाया, मैंने फैसला किया है कि दिल्ली से अंग्रेज़ी जबान में एक अखबार शाया करूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यह धंधा छोड़िए और अखबार और रसाइल के काम में लग जाइए, यह नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रवीश इख्तियार कीजिए। किताब वाला, भाई अपने आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद इस फिक्र में था कि वतन छोड़ूं, दिल्ली जाऊं और अखबार और रसाइल का सिलसिला शुरू करूं। गंगा प्रसाद, अगर आप दिल्ली आते हैं तो आगरे से खबरें कौन भेजेगा? नहीं साहब, आप यहीं रहेंगे। किताब वाला, जी मगर अंग्रेजी जबान के अखबार में। गंगा प्रसाद, आप मुरासले उर्दू में भेजिए, तजुर्मे की जिम्मेदारी मेरी है। किताब वाला, क्यों ना एक अखबार उर्दू में भी निकालें? गंगा प्रसाद, अम्मा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं। ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा, उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। हाँ, इस कारोबार के सिलसिले में कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई थी। किताब वाला, मैं इस फिक्र में था कि अखबार का काम शुरू करने से पहले मेरे सर पर जो एक बार है उसे हल्का कर लेता। किताब वाला, मैं गंगा प्रसाद, वह कौन सा? किताब वाला, सोच रहा था कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पहले उन्हें छपवा लूं। गंगा प्रसाद, मसलन? किताब वाला, यही मदरसों की चंद किताबें, करीमा, माँ मुमकीमा, आमद नामा वगैरह। मेरे पास 10 रुपए की भी पूंजी नहीं है कि इस काम में लगा सकूं। गंगा प्रसाद, क्यों? दीवाने हाफिज की 250 कॉपियों से कुछ तो वसूल हुआ होगा। किताब वाला, साहब यहाँ आपको गलत फहमी हुई है, मैंने अपने हिस्से की तमाम कॉपियाँ अहबाब में तकसीम कर दी, दाम किसी से नहीं लिए। गंगा प्रसाद, और मुझे मेरे हिस्से का पैसा देने की बजाय आपने बाकी 250 कॉपियाँ बख्श दी। अब मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं कि है दीवाने हाफिज से उसे नज़र करूं। किताब वाला, मेरी दानिस्त में यही तय हुआ था, नुकसान इस काम में मुझे भी हुआ, मेरी मेहनत जाया गई। अगर आपको इस सिलसिले में कोई गलत फहमी हुई है तो ऐसा कीजिए कि आप अपनी कॉपियां मेरे सुपुर्द कर दीजिए, जैसे जैसे वह निकलती जाएंगी मैं आपको पैसे देता जाऊंगा। गंगा प्रसाद, साहब वह अब क्या निकलेंगी और कौन उन्हें खरीदेगा? खैर छोड़िए इस बहस को, आप अखबार का काम शुरू तो कीजिए। बस इसी काम के जरिए आपके पास करीमा, माँ मुकीमा और इसी तरह की अपनी तमाम खुराफात छपवाने के लिए पैसा आ जाएगा। हालांकि मेरी यही राय है कि यह एक फिजूल काम है, इसमें आपको फिर नुकसान होगा। अब भला नए स्कूल में आमदनामा पढ़ने वाले आपको कितने मिलेंगे? अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, 2-1 दिन में फिर हाजिर होऊंगा। आदाब अर्ज़े। गंगा प्रसाद जाता है, बेनज़ीर के कोठे में शहदा नीचे उतरता है, सिपाही एक कोने में दुबक जाते हैं। जैसे ही शहदा सामने आता है लपक कर उसे दबोच लेते हैं। शहदा, अबे क्या समझ के पकड़ रहा है हराम के? अबे रंडी के कोठे पर जाना कब से इस औंधे शहर में जुर्म करार पाया है बे? पतंग वाला, अम्मा यारो क्या हुआ, किस गुनाह की पदाश में इन्हें धर लिया गया भाई? पहला सिपाही, कल यहाँ फसाद करवाया था। शहदा, अबे किसने फसाद करवाया था, कब फसाद करवाया था, कोई गवाह? दूसरा सिपाही, हवाला चलो गवाही वहीं देख लेना। बर्तन वाला, अरे भैया झगड़ा और लोगों बीच में हुआ था, पकड़ लिया तुमने किसी और को, इनको तो हमने झगड़े के समय देखा भी नहीं था। दूसरा सिपाही, हम यह सब नहीं जानते, हमें यही हुक्म मिला है। पहला सिपाही, अरे चल यार तू अपना काम कर, बखने दे। शहदा, अबे बड़ा नामर्द निकला तेरा दरोगा का बच्चा, हम समझे थे मुकाबला रावण से है, सीता हरण होगा, दो दो हाथ होंगे, हमें क्या मालूम था कि तुम्हारा शहर जन्नत की चिड़ियों से भरा पड़ा है। पहला सिपाही, यह अदालत नहीं है, जो कुछ कहना है वहां कहना, ले बस अब कदम बढ़ाइए। सौदे से लेकर को लेकर जाते हैं। पतंग वाला, अम्मा यार यह क्या हुआ? बर्तन वाला, मैं तो यहीं था, मैंने तो इस आदमी को झगड़े के समय नहीं देखा। लड्डू वाला, लूट मार के वक्त होश किसे था, शायद रहा भी हो। बेनी प्रसाद, जितने लोग लूट खसोट में शरीक थे उन सबको देखा किसने होगा? क्यों रामू, तुम सबको पहचान सकते हो? बर्तन वाला, अब यह तो मैं नहीं कह सकता भाई, सामने आएंगे तो कुछ लोगों को तो पहचान लूंगा शायद, पर यह आदमी उसमें होता तो मेरी नजर चूक नहीं सकती, मैं इसको जरूर ताड़ लेता। लड्डू वाला, यह तुम किस बिरते पर कह सकते हो? क्या इस आदमी में सुरखाब के पर लगे हैं? बर्तन वाला, इसके कपड़े, सूरत, इसके हाथ का गजरा, ऐसा कोई आदमी कल शाम तक बाजार में नहीं आया। यह आदमी दूसरे शहर का मालूम पड़ता है। मैंने इसको सांझ के समय एक रंडी के पीछे जाते देखा था। लड्डू वाला, यह भी तो हो सकता है कि इसी ने लूटमार शुरू कराई हो, उसके लिए सामने आने की क्या जरूरत है? बर्तन वाला, यह मैं नहीं जानता भाई, अगर यह दूसरे शहर का आदमी है तो यहाँ आके बलवा कैसे करा सकता है? यह भी तो सोचो। तरबूज वाला, क्यों नहीं करा सकता? बर्तन वाला, तुम लोग अपनी खैर मनाओ, इतना बड़बड़ के मत हाँको। ककड़ी वाला बहुत तेजी से दाखिल होता है, चेहरा खिला हुआ, होठों पर गाना, उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए एक कतार में बंद आते हैं। ककड़ी वाला पान वाले की बेंच पर बैठ जाता है और बड़े सुरीले ढंग से गा गा कर ककड़ी बेचता है। नज्म का हर बंद दो चार लोगों को ककड़ी का गाहक बना लेता है। ककड़ी वाला, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसकी खास काफिर इस संक दरे की ककड़ी, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें, शोरी की हसीलियां हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं, क्या खूब नरमो नाजुक इश आगरे की ककड़ी है। कोई है जर्दी माइल, कोई हरी भरी है, पुखराज मुनफ़ाइल है, पन्ने की थरथरी है, टेढ़ी है सो तो चूड़ी वह हीर की हरी है, सीधी है सो वह यारो रांझा की बांसुरी है, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी है, छूने में बर्ग गुल है, खाने में करकरी है, गर्मी को मारने को एक तीर की सरी है, आँखों में सुख कलेजे ठंडक हरी भरी है, ककड़ी न कहिए इसको ककड़ी नहीं परी है, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी है। ककड़ी वाला गाता नाचता निकल जाता है। पतंग वाला, बेनी प्रसाद से, सुन लिया बेनी प्रसाद, अब बताओ ककड़ी के मौजू पर इससे बेहतर नज्म हो सकता है? ये सनाए व बदाए, ये तस्बीहें, इस्तारे इस्तारे, तस्तलमी यानी शेरो शायरी और इल्मो अदब में जिससे हुस्न बयां कहते हैं, यह सब क्या है? सुना, एक दानाए राज की बात सुनो और हमेशा के लिए पल्लू से बांध लो। किसी पाई के मुअल्लिम ने अपने एक शागिर्द को इल्मे बयां बड़ी मेहनत से पढ़ाया। जब लड़का पढ़ लिख कर फारिग हुआ तो उस्ताद ने कहा, अब जाओ बाजारों और गलियों में घूम फिर कर लोगों की बातें सुनो और पता लगाओ कि इन बातों का इल्मे बयां से क्या रिश्ता है। लड़का गली कूचों की खाक छानता फिरा, मगर उसको लोगों की बातों का ताल्लुक इल्मे बयां से मालूम न हुआ। उसने उस्ताद से हाल कह सुनाया, उस्ताद ने उसे फिर बाए बिस्मिल्लाह से ताए तमत तक इल्म सिखाया और कहा कि एक बार फिर बाजारों के चक्कर काटो और यही बात दरफियात करो। इस दफा कुछ थोड़ा सा ताल्लुक शागिर्द की समझ में आया। उसने वापस आकर कहा, हाँ थोड़ा सा ताल्लुक मालूम होता है। इस पर उस्ताद ने कहा, अभी तुम इल्मे बयां को समझे नहीं, फिर पढ़ो। शुरू से आखिर तक एक बार फिर सब कुछ पढ़ चुकने के बाद शागिर्द क्या देखता है कि किसी शख्स की कोई बात ऐसी नहीं जिसका ताल्लुक इल्मे बयां से ना हो। कुछ समझे? बिनी प्रसाद, भाई शेर व शायरी का यह मेयार बहुत बुलंद है। दरोगा आता है और सीधा बेनजीर के कोठे पर पहुंचता है। दरोगा, बाई जी सोफते में तो हैं? तबल जी, हुजूर तशरीफ रखे, मैं अभी इत्तला करता हूँ। जाता है। सारंगिया, सरकार आज बहुत सवेरे से तशरीफ लाए। दरोगा, क्यों मगरीब का वक्त सर पर है? सारंगिया, बजा फरमाया, बेनजीर आती है। बेनजीर, आदाब बजा लाती हूँ। आज मालूम होता है घर में दफ्तर में कहीं आपका दिल लगा नहीं। दरोगा, घर दफ्तर में कब दिल लगता है? फिर कल आपके यहाँ यह नया दस्तूर देखा कि जो पहले पहुँच जाए सो पाए। चुनाचे यूँ कहिए कि कल का चला हूँ और बहुत देर सवेरे से अस्तनाए यार तक पहुँचा हूँ। आज आपका किसी और से तो वादा नहीं? बेनजीर, वादा तो आप से भी है। दरोगा, भाई तुम्हारे यहाँ तो वादों का लेन देन है। कमाल यह है कि तुम्हें याद भी है। बहरहाल आज मैं मुसल्लह हूँ। तो बेनजीर, तो कल क्या निहत्थे ही आ गए थे? दरोगा, हाँ साहब, कल हथियार भुलाए थे, आज तीर कमान दुरुस्त है। बेनजीर, यह कैसी तीरंदाज की फिक्रात तो साथ रखे हैं, तीरों तरकश ही भूल जाएं। फरमाइए किस चीज से शुरू करूं? माँ, पानदान खोलते हुए, अय हाय कैसे लोग हैं, पानदान खाली। पड़ा है, किसी को तौफीक नहीं हुई कि बाजार से चार पान खरीद लाता। तबलची पैसे लेने के लिए बढ़ता है, लेकिन मंजूर हुसैन जो इसी बीच आ चुके हैं, लपक कर खुद पैसे ले लेते हैं और पान लेने के लिए पान की दुकान पर आते हैं। दरोगा, क्या यह आपके उशाक में से हैं? बेनजीर, बहुत पुराने। दरोगा, पहले कभी नहीं देखा? क्या आप फेहरिश्त रखते हैं? 8-10 साल के मेरे आशना हैं। फकीरी, गोशागिरी और खामोशी तो अब इख्तियार की है, पहले मालदार थे। इश्क का इजहार अल्फाजो अमाल से करते थे, यानी मोहब्बत के मैदान अमल में हाथ पांव जुबान जिस्म का हर पुर्जा काम आता था। अब यह सूरत है कि अपने दिल और रूह से लिहाफ में मुझे ढांप दिया है। दरोगा, क्या कहने हैं, बड़े मज़े हैं आपके, रकाबत तो महसूस नहीं करते। बेनजीर, इस मंजिल से गुजर चुके हैं। दरोगा, क्या पागल आदमी है, बातों तो समझ लेता है। बेनजीर, मंजूर हुसैन इनका नाम है, लेकिन अब नाम से पुकारिए तो मुँह फेर लेते हैं। दरोगा, क्यों? बेनजीर, कौन जाने, शायद अपने नाम से नफरत हो गई हो, दिमाग दुरुस्त मालूम होता है। लोग कहते हैं कि एक दिन फिर बोलना शुरू कर देंगे जब माहौल बेहतर हो जाएगा। मंजूर हुसैन पान ला कर रख देते हैं। दरोगा, मंजूर हुसैन, कह कहा। दरोगा बेनजीर को लेकर अंदर चला जाता है। तरबूज वाला गाता हुआ आता है। तरबूज वाला, अब तो बाजार में बिकते हैं सरासर तरबूज, क्यों ना हो सब्ज जमरूद के बराबर तरबूज, करता है खुश्क कलेजे के तई तर तरबूज। दिल्ली की गर्मी को निकाले है या अक्सर तरबूज, जिस तरफ देखिए बेहतर से है बेहतर तरबूज। चला जाता है। लड्डू वाला गाता हुआ अंदर आता है। हमने भी गुड़ मंगाकर बंधवाए तिल के लड्डू, कूचे गली में हर जा बिकवाए तिल के लड्डू। हमको भी हेंगे दिल से खुश आए तिल के लड्डू, जीते रहे तो यारो फिर खाए तिल के लड्डू। हमने भी गुड़ मंगाकर बंधवाए तिल के लड्डू, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है लड्डू वाला। कुम्हार आता है, अपनी दुकान पर ही मटका बजा कर गाता है। वाह क्या बात, कोरे बर्तन की, कोरे बर्तन है क्यारी गुलशन की, जिससे खिलती है हर खली कली तन की, बूंद पानी में इनमें जब खन की, क्या ही प्यारी सदा है सनसन की, ताजगी जी की और तरी तन की। वाह क्या बात, कोरे बर्तन की। होली वाले गाते हुए आते हैं। कोरस, हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे। दिल भूले देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुहचंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हों तब देख बहारे होली की, गुलजार खिले हो परियों के और मंजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग के छींटे से खुश रंग अजब गुलकारी हो, मुँह लाल गुलाबी आँखें हों और हाथों से पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो, सीनों से रंग कर ढलकते हो, तब देख बहारे होली की। फकीर आदिम नामा गाते हुए अंदर आते हैं इस नज्म में स्टेज पर के सब लोग शामिल हो जाते हैं। हर बंद एक नया आदमी उठाता है और टीप की तह का सब एक साथ तीन बार दोहराते हैं। जरा जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी। कोरस। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसी गदा है सो है वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, टुकड़ी जो मांगता है सो है वह भी आदमी, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी की इमाम और खुस्त बाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या और आदमी ही उनकी चुराती हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेंग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी, बैठे हैं आदमी की दुकानें लगा लगा, कहता है कोई लो कहता है कोई ला रे ला, और आदमी ही फिरते हैं रख सिर पे ख्वांचा, किस किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वह भी आदमी, या आदमी ही लाल जवाहर है बेबहा, और आदमी की खाक से बदतर है हो गया, काला भी आदमी है और उल्टा है ज्यों तवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, बद शक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी, मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कंधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वह जो मर गया है सो है वह भी आदमी, अशरफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, है आदमी ही साहबे इज्जत भी और हकीर, यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब पे जो बुरा है सो है वह भी आदमी। गाने वालों की आवाज़ और साजों की ध्वनियाँ अचानक बहुत ऊंची उठती हैं और बहुत तेज़ी से पर्दा गिर जाता है।